नहीं है। कैसे? यदि कोई ऐसा गुरु हो उत्तम कोटि का महात्मा जो भजन में सिद्धि ला दिया हो, वो तुम्हारे भजन को ठीक कर रहा है कि नहीं, उसमें क्या कमी है इसको देखो। उसमें देखो कि गुरु को हम पहले प्रसन्न करें कैसे, वो क्या चाहता है, तब फिर भगवान के लिए हम देख सकते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं और कैसे भजन किया जाता है। इसका नाम भजन है या इसका नाम प्रेम है। आज यही तक रहे। मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबका आभारी हूँ। आप लोग इतने लोग आए हैं सुनने के लिए। कल का दिन है और परसों का दो दिन है। मैं सोचता हूँ कि और सभी अधिक संख्या में आए, इन चीज़ों को समझें और कहा गौ प्रेमानंदे।
नमो महागन्नाय कृष्णदेवमर्दाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्तुते। यं प्राप्तं ते समये कृष्णं द्वैपायनोऽभिरहा पुत्रेति तन्मे दया करो मृगु तं सर्वभूतहृदयं सवैवासिनी सवैवासिनी महिमां विप्रयासिना। अपने गुरु पार्टी महोदय माताएं पानी और बेटी जरा जो भी सबका दिवाली करके मैं आज की कथा अपने स्थान में कर रहा हूँ। शाम को 8 बजे निकलने से जो रात भर चल करके बोट से द्वारा सवेरे सुबह में पहुंच जाएंगे और कुछ लगने में शादी हुई, इसलिए 8 बजे रात में वर और वर यात्री सभी प्रस्तुत होकर के कुछ बोट में आए। वो हाथ से खेलने वाली थी। हाथ का प्रति बहुत इंजिन से नहीं बल्कि उसमें पतवार और सांप घर करते हैं घर से चार आदमी दस चार आदमी घर बैठेंगे और ऊपर सभी सजाई हुई नौका थी, उसमें सभी लोगों ने प्रवेश किया। उसमें जो चलाने वाले थे नाविक उनके दल के नेता को कहा कि आज परिशुभ मुहूर्त है, यहाँ से चल देना है। और वो सब बढ़ जाती और बढ़कर नौका के ढंगर में बैठ करके कोई सांस खेलने लगा, कोई भाई जी भी थी तबला खनक रहा था और लोग उसे गांजा भांग जाते
जगोना
जाता है। उसे ले लिया मीठा मीठा बड़े आनंद के साथ में यात्रा करने लगे। नाव के नेता पकवान में चलाने वाला था वो आया देखिए बहुत कठिन है सारी रात मौका चलानी पड़ी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा गांजा और भांग दे रहे हैं, इसे पी करके हम लोग रात भर चलाएंगे, नहीं तो हम लोग चला नहीं सकते। अच्छा ठीक है, उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने आम लगाया और पीस करके दिया और इसके बाद में गांजा भी दम सिलम पकड़े करके उन्होंने लगाया और चुप रहे वो नौका चलाने में और बड़े जोर से नौका चलने लगी और ये आनंद में मशगूल होकर के भाई जी का नृत्य और गान सुन रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में खाते पीते मौज करते हुए बारात रवाना हुई। जब सवेरा हुआ कई लोगों ने सोचा कि अब तो हम लोगों को सुबह पहुंच गए होंगे, अब तो उतरना ही होगा। तो घर के पिताजी नौका के ऊपर में आए और देखा कि हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, सुबह के किसी अगर घाट पर पहुंचे हैं कि नहीं। उन्होंने देखा कि जहाँ से हम चले थे अपनी अंगोली में वही नारियल का पेड़ है और वही घाट जहाँ पर हम लोग थे नौका भी चल रही है। उन्हें नौका ही तुम लोग ने नौका चलाया नहीं, नौका तो भी घाट पर है, हम लोग तो कटनी देता कर रहे हैं, रात में कहीं नहीं हम लोगों ने बंद किया, नौका भी बड़ी देखे चल रही, नहीं तो ये दोनों गाँव है वही हमारा नारियल का पेड़ है वही घाट है हमारा वहीं से घर की साइड पड़ता है, तुम लोग क्या किया, ये तो सब प्रपन्न हो गया हमारा विवाह की साइड भी नष्ट हो गई, विवाह भी बंद हो जाएगा सब रख। उन्होंने देखा कि क्या हुई, उन्होंने लंगर नहीं
खाया,
लंगर खाया नहीं, भगवान चल रही है और चल रही है नौका भी चल रही थी, तो सब से मस्त से घर नहीं विवाह बंद हो गया। किसी प्रकार से टेलीग्राम दिया गया उस बार उस दिन का टाइम बनने लगे अपने दूसरे दिन के लिए तात्पर्य भजन करने के लिए हम साधन भजन शुरू करते हैं, सवेरे करते साधु जी की पूजा आरती का कर लेते हैं, उसे नाम भी कर लेते हैं, नारायण का प्रवचन भी कर लेते हैं, करो प्रणाम सुख सिद्धांत राम सत्कार सब कर लेते हैं, किंतु संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति जहाँ की होनी संसार के प्रति हमारी आसक्ति ये लंगर नहीं खाया लंगर ये जमीन खा करके संसार से आसक्ति को हटा देते मैं अब बहुत क्रोध कर नारायण के हटा देते जरा और फिर भगवान भी वो मैं वो हमारे प्रभु है मैं उनका साथ हूँ और भगवान की तरफ में स्थिति है हमेशा ही भक्ति है, तो थोड़ा सा भजन करने से भी इतना भजन की योग रखनी पड़ेगी हमारा कार्य उसी को जाएगा और हम देखेंगे सभी माया को पास रखे सदा के लिए प्रभु के धाम में पहुंच कर उसी मित्र से मांगे आप समझ रहे हैं विद्या जब तक ये आपत्ति नहीं हटाएंगे संसार से, ये मेरा है, यही सुख अच्छा है। मेरे भक्त सुख रहे या नाती का मुख भेज लेता है या देख लेती बहुत। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। ठाकुर जी के घर में गई पूजा किया, और ऑफिस में जाना है, आज विलम्ब हो गया है, जल्दी से जल्दी के मन तो वहां और सुधार दर्शन काफी जल्दी से। इसलिए ऐसे भजन से नहीं होगा, शुद्ध रूप में परमात्मा गुरु को और हमारी गगन मुझे भगवान को पाना है। एन अपने कपड़े राज्य मस्ती जब तक ये एन ऑन प्रोजेक्ट लाइफ का ये भगवान का प्रेम हम को चाहिए, भगवान के चरण में हम पाएंगे कभी चाहिए, और उसके लिए हम सदगुरु से लेकर के संबंध भगवान से काम करते जब तक नहीं करें, और इन्हीं का इसके बाद ला करके ऊपर लौटा कर रख रहे हैं, मैंने भगवान के चरण में रखें तब थोड़ा भी भजन होगा। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा प्रसंग है कि साधक लोग भी बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए, कभी आसक्ति रूपी नगर को भी हटा दिया है, और हटा करके जगह सामने आए भागवत छोड़ दिया, स्त्री पुत्र परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर अपन में एकांत स्थिति में रहते भगवान का भजन करते। किंतु किसी प्रकार से वो लंगर की तक गिर गया पानी, रत्ना किसी चीज में लाने को रखे हैं तब तो मैंने कहा एक दूसरे पर बच गया आप गुजराती ही ग्रंथ खराब हो कहते इसको सुमन भागवत भजन करने से ही नहीं होगा, आप पत्नी को हटाइए भगवान में बात करती हुई संबंध के साथ भजन की थोड़े संकेत में सुबह में जाएगी धीरे धीरे संकेत 15 मिनट अभी जन्म मन तुम्हें हमें भ्रमण करना होगा। इसलिए चंद्र महाराज ने आज्ञा तुम और भगवत के लिए प्रसन्न हो गए। श्री भरत महाराज की कथा थी, ऋषभ देश के पुत्र हुए भरत महाराज, जिनके नाम से यह भारतवर्ष पूरा है। भरत महाराज बहुत बड़ी प्रता की राजा चक्रवर्ती सम्राट, प्रजाओं को पुत्रवत उन्होंने पालन किया, परंतु भरत पर भक्ति होने के कारण जीवाकाल में ही उन्होंने राज्य पास धन ऐश्वर्य संपदा सब कुछ परित्याग कर दिया। एक आश्रम में जाकर के उपस्थित हुए, वहां भजन साधन जन्म, पास में गंडकी नदी, प्रतिदिन उसमें स्नान करती, हाथ में सालग्राम शिलाएं लग जाती, तो उन शिलाओं को उठा करके लाती, प्रतिदिन उस सालग्राम शिला की पूजा किया करती और विधिवत भगवान का भजन पूजन मंत्र जप आदि के द्वारा निरंतर प्रभु के भजन में लगे थे। भजन करते करते बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचे। एक दिन दैव क्रम से हुआ क्या, यह हिरण नदी के किनारे वहां पानी पीने के लिए उपस्थित थे। जैसे पानी पीने लगी, इतने में एक सिंह आया, बड़े जोर से गर्जन किया। उसके गर्जन से हिरण सांप उठी। उस समय हिरण ने पानी के ऊपर छलांग लगा दी। जैसे ही उड़ी, इतने में उसके पेट में बच्चा था, तो पेट से स्खलित हो गया। हिरण उस नदी को पार करके उस बार निकल गई और उसका बच्चा जो था पानी में डूबता उतरता रहा। ऐसे समय में भरत महाराज जी जो भजन कर रहे थे, उस हिरण शिशु को देख करके उनके उसके प्रति दया आई। तब वहां से उठ के चले, पानी में तैरते किए गए, जाकर के उस बच्चे को उठा लिया, लेकर के आए, कोमल कोमल पत्तों को खिला करके उसको पालन पोषण किया। और वह हिरण शिशु इतना प्यार हो गया कि दिन रात उसके गोदी में चल जाते और उसके साथ सामने सामने खेलते कूदते। हिरण को देख करके भरत महाराज भी गया, उसके प्रति बड़ा स्नेह उदय हुआ और वो स्नेह ममता जो संसार में स्नेह ममता लगाई जो छोड़ करके आए थे, आज एक हिरण शिशु के प्रति ममता बढ़ती चली गई। इस कारण उनका भजन साधन धीरे धीरे धीरा होता चला गया। किसी ऐसे समय में एक दिन काम उपस्थित हुआ, एक दिन हिरण का दल आया तो हिरण के दल में पूरे हिरण शिशु भी चला गया। नहीं होते खेलते खुलते हुए चला गया, मुझे पता नहीं था। भर वहां ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते दिन वहां हो गया, पता ही नहीं था। शाम हो गई, एक पहाड़ की चोटी में चढ़ गए, वहां से बहुत दूर तक देखा, जब संधान नहीं मिला, बड़े दुखी होकर के घर में लौटे। आश्रम में रहते हुए हिरण की चिंता में डूब गए। ऐसे समय में काल उपस्थित हुआ, जो जिसकी चिंता करता है उसके सामने काल उसी रूप में आता है और उसी रूप में आकर के उसमें तन्मय हो जाता है और वैसे ही काल उसको अपने जाल में समा लेता है। भरत महाराज जी हिरण की चिंता करने लगे कि देखा कि उन्हें काल हिरण रूप बन करके वहां उपस्थित हुआ। उनको पता नहीं था कि यह काल है, परंतु हिरण की चिंता में डूबे हुए कि वही हिरण सामने आया। उसे देख करके बड़े आनंदित हुए और उस हिरण की चिंता में आवेश थे कि इतने में शरीर छूट गया। शरीर के छूट जाने से दूसरे जन्म में हिरण होकर के जन्म लेना पड़ा। यही संसार में परिणाम होता है। जब जब बापी स्मरण भाव तम से चले ग्रम तम कमी वर्षिकों के सदा सद्भाव भाव। भगवान ने अर्जुन को कहा हे अर्जुन, अंतिम समय में जो व्यक्ति जैसा जैसा चिंतन करता है उसके अनुरूप उस भाव में विवाहित होकर वैसे ही जन्म को धारण करता है, जन्म ग्रहण करता है। इसलिए हम लोग संसार में जैसे जैसे चिंतन मनन करते हैं, जीवन भर हम लोगों के किए हुए वही सब अंतिम समय आने पर स्मरण में आ जाता है और प्रत्येक कुछ चिंता में डूबे हुए व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है, अगले जन्म में जाकर के फिर से वैसे ही जन्म लेता है। भरत महाराज दूसरे जन्म में हिरण होकर के आए, परंतु पहले जन्म में उन्होंने भजन साधन किया इसलिए उनको स्मरण बना रहा, उसको जाति स्मरण कहा जाता है। स्मरण हो जाने से अब उन्होंने सोचा कि अब हमें इस सुख में नहीं रहना है, इधर उधर घूमना फिरना भागा दौड़ी ये समस्त छोड़ करके एक आश्रम में ही रहने लगे। वही रह करके ऋषि मुनियों के झूठे पत्थर प्रसाद जो कुछ मिल जाता वही सब खा करके जीवन धारण कर रहे
उनके कथाओं को सुनते
और ऋषि मुनियों की कथाओं को सुनने लगे। उनके स्वभाव में जो कथाएं होती हैं वो सब बड़े ध्यान से सुना करते हैं, इस प्रकार भक्ति भाव में ही डूबे रहे। अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, उस समय वहां नदी में उतर गए, पानी में जा कर गए, आगे शरीर को डुबो कर वहीं पर भगवान की स्तुति प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार का स्तुति करते करते उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर अब शरीर छोड़ने के पश्चात तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर पूर्व जन्मों की स्मरण रही, इसलिए भरत महाराज जी अब जन्म भरत बनते कि जीवन भर किसी से बातें नहीं की, न मुहूर्त न कोई बातें की, न किसी प्रकार कोई ऐसा काम हो जिससे कि आकृति बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। जड़ वक्त एक पागल की भांति उसी तरह से रहने लगी। इधर पिता माता ने बहुत प्रयास किया पढ़ाने लिखाने को, परंतु कुछ पढ़े लिखे नहीं। अंत में उनके पिता माता स्वर्गवासी हो गए। इधर में उनके भाई और भातृवधु उन लोगों ने उतना आदर नहीं दिया, जैसे तैसे उनको जो कुछ मिलता खाने पीने को दे देते, परंतु वे उसी से संतुष्ट रहते। किसी प्रकार कोई कष्ट दुख मोह उन्होंने अपने जीवन में नहीं अनुभव किया। इस प्रकार चलता फिरता रहा। एक दिन उनके भाइयों ने एक खेती में बैठा दी पहरा देने के लिए, बोले खेत की पहरादारी करो। पहरादारी में बैठे हुए गाय आकर के पक्षी आकर के खेती को उजाड़ने लगे, खाने लगे, पर तो इनको कोई परवाह नहीं, उधर की तरफ पीठ फेर कर बैठू। इसी प्रकार बैठ रहे। एक समय कुछ डकैत हो रहे, डकैते जाने को मन चाह कि आज अच्छी डकैती हो जाए, अच्छा लूट मार में सामान मिले, तो देवी को एक मनुष्य की बलि चढ़ाए। इस प्रकार डकैतों ने देवी की पूजा करते, देवी से प्रार्थना की मांग किया था। तो उस दिन रात को वो ढूंढ रहे थे, कोई एक आदमी मिल गया, देखा कि खेती में बैठा हुआ एक आदमी। तो भरत महाराज जी बैठक मिलते उसे उठा करके पकड़ करके ले गए, ले गए तो कोई बात नहीं, ले जा करके उनको खिलाया पिलाया, लाल कपड़े गले में बांध दिया, लाल सीता आदि तिलक लगा दी और देवी के सामने ले जा करके बलि देने की जो लकड़ी होती है तो उसके बीच में उसे लगा दी। उसके गले को लगा के ऊपर से लकड़ी को बलि देने को। फिर भी भरत महाराज जी को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जो प्रभु की इच्छा होगी वही है। जब जगत के सरदार ने पूजा कर के बलि देने के लिए तलवार उठाया, इतने में मूर्ति में से देवी अट्टहस्त करती हुई एकदम निकल गई, हंसती हुई जगत के सामने आ गई। सभी लोग देख करके आश्चर्य में है कि देवी हमारी पूजा से प्रसन्न हो रही है, स्वयं बलि लेने के लिए यहाँ आ गए। और देखते देखते जगत के हाथ से तलवार को ले लिया, ले करके जितने कर्म वहां खड़े थे सब उसको समाप्त कर दिया। तलवार फेंक करके साथ ही साथ उस लकड़ी जैसे उनको उठाया, उनके सारे बंधनों को खुला, खोल करके देवी ने क्षमा मांगी कि आप ब्रह्मा जो महान देखी, आप छिपे हुए देश में इस प्रकार घूमते हैं, लोगों को पता नहीं, इन जगतों को आप क्षमा करें, हमें भी क्षमा करें। इस तरह से ये ब्रह्म के पुरुष जो कि भरत महाराज जी भगवान के चिंतन में भगवान की आराधना में डूबे हुए, उनको संसार की कोई परवाह नहीं। फिर वहां से चले, वहां से चल करके फिर खेती में रहते हुए दिन में रघुवर महाराज जा रहे थे किसी ऋषि आश्रम में, तो पालकी में बैठे हुए थे, कहा लोग कंधे पालकी लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते उन सहारों में से एक को बुखार आ गया। बुखार आ जाने से बोले कि महाराज एक को बुखार हो गया, हम लोग कैसे चले? तो महाराज ने आज्ञा दी, जाओ हमारे राज्य में कोई बेकार हो, कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसे, उसको पकड़ के चलाओ। तो ये लोग ढूंढने चले, ढूंढते ढूंढते देखा कि खेत में एक मोटा प्रकार से बैठा हुआ है, भरत महाराज जी को मिला। तो भरत महाराज जी को पकड़ करके ले आए, पालकी में लगा दी, बोले कि चलो चलने लगे। चलते चलते अब उनको उन लोगों के काम में उसी प्रकार चलने का अभ्यास काम है। दूसरी बात, रास्ते में कीड़े मकोड़े हैं, वे देख सुन करके चलने लगे। तो चलते चलते पालकी और हिलने लगे, तो राजा अंदर बैठे हुए गिरने लगे, बोले कि क्या हो रहा है, पालकी ऐसे क्यों बोल रही है, कैसे हिल रही है? महाराज ये नया आदमी जो चल रहा है ये ठीक ढंग से चल नहीं पाता है, इसलिए पालकी हिल रही है। उस समय राजा बड़े कटाक्ष किए, बोले कि अरे तुम खाया पिया नहीं है, बहुत दुबला पतला है, बड़ा कमजोर है, चल नहीं पाता है, समझता नहीं है मैं देश से आया हूं, ऐसे ही कहा, कुछ बोले नहीं, चलने लगे। चलते चलते फिर से ऐसी पालकी को ढूंढने ढूंढने लगे, तब बोले अरे बड़ा ढूंढ गए, तो समझ नहीं रहा है, मैं देश का आया हूं, मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा, मैं शासन करने वाला हूं। तो इस तरह से कोई बात नहीं। उस समय भरत महाराज ने मुंह खोला, बोले कि अरे कौन राजा है और कौन प्रजा, कौन मोटा और कौन पतला, कौन शासन करने वाला, कौन किसको शासन करता है, ये सारी बातें। इतने में रघुनाथ राजा को ध्यान आया, बोले अरे मैं इन्हीं प्रश्नों को करने के लिए तो जा रहा हूं, किसी छात्र संतों के आश्रम में पहुंचना चाहता हूं, यही प्रश्न तो मेरे अंदर में था। और ये बोले कौन है, आगे किए थे पालकी उतारो, पालकी उतारी थी, महाराज बाहर आए, आकर के उसके और देखा कि उसके गले में एक जने हुए, वो भी पड़ा लगा, शरीर में धूल मिट्टी मेरा जम रहा है, सभी पुराने एक कपड़े पहने थे, कौन है? उस समय उनको प्रणाम किया कि लगता आप कोई ब्राह्मण, कोई महान ऋषि, आप तो कोई कपड़े तो नहीं, आप तो कोई ऐसे महान ऋषि तो नहीं है, आप कौन है?
कृपा करके हमें बताएं। और मैं आपने जो कुछ कहा मैं इन्हीं सब को जाने के लिए जा रहा था, मेरे समझ में नहीं आया आपके इन बातों से, आप कृपा करके समझाएं। तब भरत जी ने कहा अहम पूरा भरतो नाम राजा आती, मैं पूरा काल में भरत नाम का राजा था, आप ही पूर्वज मेरे नाम से ही भारतवर्ष है, चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़ करके आया भजन करने को, और भजन करते करते ये गिरह के प्रति आसक्ति जन्म उस कारण मुझे दूसरे जन्म में गिरह होकर के जन्म लिया पड़ा, और तीसरे जन्म में मैं इस प्रकार ब्राह्मण सुन गया है। इसलिए ये महाराज कहूंगा इस संसार में आत्मा जो है अजर और मित्र सनातन, उसका न तो कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु, मित्र सदा एक ही एक रूप है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन जो कुछ होता है केवल शरीर का होता है, ये शरीर कपड़े के समान है, जैसे हम एक नया कपड़ा पहनते जब वो पुराना हो जाता है फट जाता है उसे बदल के फिर नए कपड़े को धारण किया जाता है, ऐसे